ओम शांति। बौद्ध धर्म के धम्मपद में एक कहानी का वर्णन है जिसमें एक स्त्री है और जिसका विवाह हो जाता है, परंतु विवाह के कुछ समय बाद उसे यह पता चलता है कि मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वो है तपस्वी जीवन और ना ही किसी की पत्नी बनना। तो वो स्त्री बहुत दुखी हो जाती है और सोचती है अब मैं क्या करूं। विवाह का बंधन और अंदर उमड़ता वैराग। तो अपने पति को एक दिन बताती है कि ऐसा ऐसा मुझे वैरागी जीवन व्यतीत करना है और ना ही कि ये गृहस्थ जीवन। तो पति को बहुत दुख होता है, परंतु वो कहता है ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और वह स्त्री देवदत्त के संघ में चली जाती है। जब महात्मा बुद्ध का विशाल संघ होता है, उसी के साथ साथ उनका जो चचेरा भाई होता है देवदत्त, उसका भी अपना एक संघ होता है, वैसा ही सन्यासियों का। तो वो स्त्री देवदत्त के संग में चली जाती है, वहां साधनाएं आरंभ करती है, परंतु वो गर्भवती होती है और धीरे धीरे सबको पता चल जाता है कि यह स्त्री तो गर्भवती है और ये आश्रम के नियम और संघ के नियमों के विरुद्ध है और उस पर बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं कि तुम भिक्षुनी बनने के बाद यह हुआ है। परंतु वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। फिर भी उसकी कोई नहीं सुनते और देवदत्त से बहुत कटु वचन सुनने के बाद वह भिक्षुनी वहां से निकलकर महात्मा बुद्ध के संग में चली जाती है। वहां पर कुछ दिन जब और बीत जाते हैं तो दिखाई पड़ने लगता है कि यह स्त्री तो गर्भवती है और भिक्षुओं की इस सभा में, इस सन्यासियों के दल में ये क्या। और उन्हें यह भी पता चलता है कि पहले ये देवदत्त के संग में थी और वहां से निकलकर इस संग में आई है, तो क्या किया जाए। महात्मा बुद्ध इसकी पूरी जांच पड़ताल करते हैं कि वो कहती है मैं संघ में आने के पहले ही गर्भवती थी, परंतु केस हियरिंग राजा के सामने, जैसे कि उसको किसी एक दूसरी सीनियर भिक्षुणी होती है, सन्यासिनी, उसको नियुक्त किया जाता है ये सब क्या है ये जानने के लिए, समझने के लिए, जैसे कि कोर्ट हियरिंग होती है और अंततोगत्वा ये प्रमाणित हो जाता है कि वो जो गर्भ था वो पहले का है, संन्यास लेने के बाद का नहीं। और कुछ समय के बाद वो भिक्षुनी एक पुत्र को जन्म देती है और उस देश का राजा सहर्ष उस बेटे को अपनाता है और ले चला जाता है और वो बेटा राजमहल में पलने लगता है। भिक्षुनी सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है और अपनी गहनतम साधना में लीन हो जाती है, उसे सारा संसार भूल जाता है। बौद्ध धर्म में जो ऊंची अवस्था है अरहंत की, धीरे धीरे वो उस अवस्था तक पहुंचती है। इधर जो बच्चा होता है वो बड़ा होता है, वो लगभग 8 साल का हो जाता है और एक दिन उसे पता चलता है कि मेरी जो माँ है वो तो भिक्षुणी है, और ये सुनते ही उसके मन में तीव्र वैराग उत्पन्न होता है और वो अपने पिता से कहता है कि मुझे भी ऐसी ही साधना वाला जीवन चाहिए, राजमहल राजपाट ये जीवन मैं नहीं जी सकता। और वो बच्चा भी संघ में आ जाता है और अगले 12 साल तक, जब तक वो 20 साल का होता है, कठोर तप करता है, कठोर साधना करता है। और एक दिन अचानक उसकी जो माँ है उसको पता चलता है कि ये मेरा बेटा है, और वो माँ उस बेटे को मिलने जाती है। गहरा इमोशनल, अभी तक की जैसी उसकी जो भी साधना थी एक क्षण में सब कुछ नष्ट हो जाती है और एकदम मातृत्व का भाव जागृत हो जाता है, आंसू आने लगते हैं और वो, क्योंकि उसकी माँ है, वो अब तक का सारा कुछ भूल जाती है और बेटे को तो अब तक देखा ही नहीं था, पर जब पता चला वो भी यही है और वो इतना तपस्वी बन गया है, तो एकदम से जाकर उसको गले लगने की कोशिश करती है, आंसू आते हैं, डीप भाव सारे अभिभूत होने लगते हैं, पर वो बेटा उसकी तरफ देखता तक नहीं। वो भी समझता है यही मेरी माँ है, और इसी के बारे में सुनकर मैंने भी संन्यास लिया था। परंतु जैसे ही वो सोचता है और देखता है उसकी माँ इस तरह से भाव विभोर हो रही है, वो कड़क जैसे रुख इख्तियार करता है और कहता है, तुम कौन हो मुझे पता नहीं, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं, जाओ अपने मार्ग पर। उसको बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है, परंतु धीरे धीरे उस स्त्री को यह समझ में आता है, मेरे बेटे ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जिस साधना में वो थे लगे दोनों ही माँ और बेटा, वहां पर सभी इमोशनल अटैचमेंट्स दुख के कारण है। ऑल इमोशनल अटैचमेंट की व्यर्थता फ्यूटिलिटी क्या है उस बेटे को समझ में आ चुकी थी, और वो ये नहीं चाहता था कि उसकी माँ जो इतने समय से तपस्या कर रही है, इतने समय से साधना कर रही है, वो मुझ में फंस जाए और ये नया बॉन्डेज क्रिएट हो जाए। और वो ये भी नहीं चाहता था कि मैं जो साधना कर रहा हूं और मैं जो इस तरह से आगे बढ़ रहा हूं उसमें ये माँ के प्रेम का एक बंधन नया उत्पन्न हो जाए, एक फ्रेश बॉन्डेज आ जाए। और इसलिए वो इस तरह से उससे बात करता है जैसे कि कोई लेना देना नहीं। धम्मपद में इस कहानी का बहुत विस्तार है, आगे भी काफी चर्चा है कि कैसे देवदत्त ने जो कुछ किया, या फिर ये भिक्षुनी देवदत्त के पास ही रहती तो वो और उसका बेटा दोनों ही बौद्ध धर्म के अरिहंत पद तक नहीं पहुंच पाते, जो सर्वोच्च पद है वहां का, वह निर्वाण की अवस्था। दोनों की अपनी अपनी साधनाएं, और माँ को भी धीरे धीरे समझ में आया, पहले दुख हुआ, हर्ट हुआ, पर बाद में मेरे बेटे ने ऐसा क्यों किया, ये उसको समझ में आया, और वो भी संपूर्ण नष्टोमोहा होती गई। ऐसा ही वर्णन बाइबल में भी है, जीसस क्राइस्ट अपनी माँ से एक जगह कहता है, वुमन हु आर यू, व्हाट यू हैव टू डू विथ मी, माँ भी नहीं कहता है उसको, वुमन व्हाट यू हैव टू डू विथ मी, हे स्त्री तुझे मुझसे क्या लेना देना है। संडे की अव्यक्त मुरली, बाबा कुमारियों से और कुमारों से बात कर रहे हैं और बहुत गहरी चर्चा उसमें की है। दुख की चर्चा तो है और दुख से मुक्त होने की भी चर्चा है, पर पहले हम चर्चा करेंगे जो बातें बाबा ने कुमारियों से कही। क्या कहा कुमारियों से बाबा ने? ढेर सारी बातें कही है, 10-12। क्या कहा? कॉलेज, स्वतंत्रता, कॉलेज, घर, वर, माला, स्कॉलरशिप, कंबाइन, शिव शक्ति और माला इधर और माला उधर, पैसे, मनी, होम, स्कॉलरशिप, चमाट, रोटी, डबल फॉर्चुनेट, बहुत सारी बातें की है। तो कुमारी अर्थात स्वतंत्र, सबसे पहला महावाक्य क्या है? यह केवल कुमारियों के लिए नहीं है, सबके लिए। कुमारी अर्थात स्वतंत्र, कोई भी बंधन जिसे स्वीकार नहीं, किसी भी तरह का बंधन, कुछ भी इस ब्राह्मण जीवन में बंधन बन सकता है। जो तथा कथित अभी जो प्रेम दिखाई दे रहा है, तथा कथित अभी अभी जो सेवा का संबंध दिखाई दे रहा है, जो पुण्य दिखाई दे रहा है, वो सेवा, वो पुण्य, वो संबंध ही बंधन बन सकता है। और परतंत्रता दुख है, किसी भी तरह की परतंत्रता, किसी भी तरह की, अथा दुख समाया है उसमें। व्यक्ति अंदर ही अंदर इमोशनली स्लेव, गुलाम बन जाता है। जीवन के रहस्यों को जिन आत्माओं ने गहराई से समझा है, उन्होंने हमेशा अपने आप को सभी बंधनों से मुक्त रखा है। कुछ भी बंधन हो सकता है, कुछ भी, पुरुषार्थ से लेके तो, पुण्य से लेके तो, कुछ भी, कोई संबंध, कोई सेवा, कुछ भी। मुस्लिम संत बायजीद ने लिखा है कि मैं पहली बार जब काबा गया, क्योंकि वो जहां रहता था वहां से बहुत नजदीक था वो, तो मुझे काबा दिखाई दिया। दूसरी बार जब काबा गया तो काबा का जो मालिक है वो दिखाई दिया। तीसरी बार जब काबा गया तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया, रिक्त। इसलिए तब से उसने जाना बंद कर दिया, चौथी बार गया ही नहीं हज की यात्रा में। लोग कहते थे क्यों नहीं जा रहे हो, इतना नजदीक है। वो कहता था अब मुझे जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो भी एक बंधन जैसे बन रहा था, क्योंकि मैं वो जो वहां देखा अब वो मैं अंदर ही महसूस करता हूं। एक दूसरा यात्री हज की यात्रा जा रहा था तो वो उससे पूछता है यहां से काबा कितना दूर है, आप गए हो? वो कहता है हाँ मैं 3 बार गया हूं। तो आप चलोगे हमारे साथ? वो यात्री या बहुत सारे यात्री, वो कहता है अब मुझे जाने की जरूरत नहीं और तुम भी मत जाओ। वो कहता है क्यों? तो वही वो कारण सुनाता है, पहली बार मैं गया तो काबा दिखा, दूसरी बार गया तो काबा का मालिक, और तीसरी बार गया तो केवल रिक्तता। अब तुम एक काम करो, मेरे ही 3 परिक्रमा लगा दो बस, और जो पैसे है वो इधर दे दो, मेरे काम आएंगे, तुम्हें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, मैं ही काबा बन चुका हूं। वो अनुभव मुझे यही होता है उस खुदा का, अब मुझे कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। कुमारी अर्थात स्वतंत्र, कुमारी अर्थात डबल भाग्यवान, कुमारी अर्थात किसी कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की या लड़कियां नहीं, कॉलेज के भान से परे जैसा बाप वैसी मैं, छोटे छोटे भावों से ऊपर उठा दिया है स्वयं को। यहां महानता का संबंध आयु से नहीं है, इसके लिए अपने आप को क्या नहीं समझना है, कुमारियों को कहा कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां नहीं, तो क्या समझेंगे फिर, जैसे बाप वैसे मैं, क्या समझेंगे शिव शक्ति, क्या समझेंगे कंबाइंड, क्या समझेंगे बाल ब्रह्मचारिणी, संपूर्ण पवित्र शुभ कार्य, शुद्ध आत्माओं का संगठन, ऐसे ऊंचे ऊंचे सम्मान दे दिए, डबल भाग्य, भाग्य क्या और प्राप्ति क्या, यह सोचने वाली कुमारी अर्थात वरमाला किसी भी देहधारी के गले में डालने वाली नहीं, कोई भी देहधारी उसे स्वीकार नहीं, तो क्या करना है फिर, एक बाप के गले की माला का मन का बनना है, या फिर आगे कहा विजय माला का मन का बनना है, देहधारी में फंसना ये बहुत बड़ा बंधन है, देहधारी को साथी बना लेना बहुत बड़ा बंधन है। आत्मा अंदर से स्वतंत्र रहे, कोई बंधन नहीं, कोई आधार नहीं, कोई नहीं चाहिए, ना प्यार चाहिए, ना केयर चाहिए, ना अटेंशन चाहिए, ना किसी का साथ, ना किसी का सहयोग, कुछ भी नहीं चाहिए। जब ऐसी अवस्था होगी तो जो नहीं चाहिए वो अपने आप मिलेगा, और जब चाहिए होगा तब चाहते हुए भी नहीं मिलेगा और दुख बढ़ेगा। कुमारी अर्थात उस पैसे के पीछे पागल नहीं, दुख और अशांति की चमाट और फिर दो रोटियां। कुमारी अर्थात सर्व खजानों की मालिक, सर्व अधिकारी, अधिकारी भगवान ने बनाया है, भिखारी नहीं। अगला, कुमारी अर्थात शिव शक्ति, कुमारी अर्थात कंबाइंड, कुमारी अर्थात स्कॉलरशिप लेने वाली। स्कॉलरशिप कौन सी, स्कॉलरशिप क्या, ठीक बादशाह वो मुरली में है, कुमार विजय माला का मन का बनना, एक बाप दूसरा ना कोई, पालना का रिटर्न देना, यही स्कॉलरशिप है। कुमारी अर्थात सदा एक गीत गाने वाली, कौन सा, पाना था सो पा लिया। कुमारी अर्थात शुद्ध आत्मा, कुमारी अर्थात बाल ब्रह्मचारिणी, कुमारी अर्थात पवित्र संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, इतनी सारी ऊंची ऊंची बातें कुमारियों के लिए कही है। इस शब्द में कितनी पावर है, बाल ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचर्य का तेज जहां पर है ऐसी कुमारी। दूसरा, बाबा ने बात की कुमारों से, क्या कहा कुमारों को, कुमार अर्थात पहला गॉडली यूथ अर्थात स्थापना के निमित्त, संसार की जो युवक है वो विनाश के निमित्त है, विनाशकारी प्रलयंकारी युद्ध है। हम युद्ध कौन से हैं? गॉडली युद्ध, स्थापना के कार्य के निमित्त युद्ध, स्थापना के कार्य में सहयोगी। दूसरा बताया कुमार अर्थात जिसमें बाप दादा की श्रेष्ठ उम्मीद है। कौन सी उम्मीद? कौन सी उम्मीद? झंडा लेके घूमेंगे, विजय का झंडा लेकर घूमेंगे विश्व पर, सारे विश्व में विजय का झंडा फहराने वाले, लहराने वाले। तो जब सारे विश्व में विजय का झंडा लहराना है तो अंदर विजय की अनुभूति हो, कदम कदम पर ऐसा लगे विजय हुई है, हर दिन ऐसा अनुभव हो कि विजय हुई है। एक अनुभव है दिन भर का हार, फिर से संस्कार आ गया, फिर से दुख, फिर से दर्द, फिर से पीड़ा, फिर से अशांति, फिर से फ्रस्ट्रेशन, और एक अनुभव है कि आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसकी अपनी खुशी है। आज पुरुषार्थ श्रेष्ठ रहा, आज कहीं पर भी टाइम वेस्ट जरा भी नहीं हुआ, आज मन में श्रेष्ठ संकल्प आए, आज मुरली का मनन किया, चिंतन किया, विघ्न परिस्थिति और पेपर। आज सुबह वरदान में कहा था परिस्थिति क्या लगे, साइट सीन, विघ्न क्या लगे, आगे बढ़ाने का साधन, और पेपर, क्लास आगे बढ़ रही है। पेपर आया मतलब पेपर क्यों आता है, क्लास आगे बढ़ाने के लिए। तो बाप दादा की उम्मीदें हैं कि विजय का झंडा लेकर सारे विश्व में घूमे। दूसरा, तीसरा, कुमारों के लिए कौन सी कला है? चढ़ती कला, रुकती कला नहीं, पुरुषार्थ रुक ना जाए। जो कल पुरुषार्थ था आज उसके आगे, तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा बाबा ने मुरली में दी है, एक सेकंड पहले जो पुरुषार्थ था, जो स्थिति थी, एक सेकंड के बाद वो स्थिति ना हो, उससे आगे हो, ये है तीव्र पुरुषार्थ। ऐसा नहीं जो कल अवस्था थी, जो कल दुख था, जो कल पीड़ा थी, जो कल दर्द था, वही हार, वही पराजय का अनुभव आज भी चल रहा है। मधुबन में आए, मधुबन में सारा कुछ किया, परंतु पराजय साथ साथ चलती है। यह कुमार नहीं, कुमार अर्थात विजयी, कुमार अर्थात सदा उड़ती कला, रुकती कला नहीं। तीसरा, चौथा, कुमार अर्थात सर्वशक्तिवान बाप साथ है। ऐसा कोई कार्य नहीं जो हम नहीं कर सकते, ऐसा नशा, ऐसा उमंग, ऐसा उत्साह, ऐसा अदम्य साहस कि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो हम नहीं कर सकते, असंभव कुछ भी नहीं है। चाहे कुछ भी करना पड़े करेंगे। चौथा, पांचवा, कुमार अर्थात शांति फैलाने वाले। वो जो युद्ध है वो अशांति मचाने वाले हैं, शांति फैलाने वाले। स्वामी विवेकानंद के जीवन में वर्णन है 1890, जब वो गाजीपुर गए थे, उनकी बहुत इच्छा थी कि पवहारी बाबा से मिले। जो पवहारी बाबा थे वो कुछ खाते नहीं थे, तो उनकी बहुत इच्छा थी कि इनसे जाकर मिले। वहां पर जाने के बाद भी मिल नहीं सके, क्योंकि वो बाबा जी ऐसे थे किसी से मिलते नहीं थे, कुछ खाते नहीं थे और मिलते भी नहीं थे किसी से, बहुत मुश्किल से मिल पाए। और मिलने के बाद उन्होंने उनसे कहा कि आप जैसा जो व्यक्ति है, रियलाइज्ड सोल, पहुंची हुई आत्मा, आपको तो बाहर निकलना चाहिए गुफा से और लोगों की सेवा करनी चाहिए। आप ये अंदर बैठ के क्या करते रहते हो? आपको तो बहुत आवश्यकता है संसार को आपकी, आप अगर आके कुछ शिक्षा दे तो जगत का कल्याण हो जाएगा। वो कहते हैं तुम क्या समझते हो, क्या शरीर से ही सेवा की जा सकती है? मैं यहीं बैठकर ही सारे विश्व की सेवा करता हूं मन से केवल। ऐसा ही एक दूसरा वर्णन है, विवेकानंद जाते हैं और एक बहुत योगी से मिलते, बहुत बड़ा योगी होता है, तो वो योगी बात बात में एक बात करता कहता है कि क्या आप पवारी बाबा को जानते हो? बोलता हाँ जानता हूँ, उनके बारे में आपने क्या सुना है? तो कहता है हाँ एक कहानी प्रसिद्ध है जिसका बहुत सारी किताबों में वर्णन है कि पवारी बाबा के पास एक चोर जाता है चोरी करने, तो वो चोर सामान पूरा इकट्ठा करता है और तब तक इस बाबा जी की आंख खुल जाती है, तो चोर आधा सामान वही छोड़ता है और भागने लगता है, तो ये पावारी बाबा उसके पीछे भागते हैं, अरे भाई जो बचा हुआ है वो भी ले जाओ, और उस चोर को पकड़ते हैं और वापस लेके आते हैं और सारा सामान देते हैं। तो ये जो योगी है वो कहता है आई एम दैट थीफ, वो जो चोर था जो भागा था, कैसे परिवर्तन कर दिया उसको दिखाया नहीं उस पावारी बाबा ने, बस जो बचा है वो भी ले जाओ। तो वो कहता है योगी जिनसे वो गाजीपुर में मिलते हैं आई एम दैट थीफ, वो थीफ मैं ही हूं। इसके लिए जो उत्तर पहले उन्होंने दिया और उनको कहते हैं कि तुम निकलते क्यों नहीं बाहर, तो वो कहता है कि मैं यही बैठ के सबकी सेवा करता हूं। सिस्टर निवेदिता ने अपनी किताब में लिखा है माई मास्टर एज आई सॉ हिम, कि पावहरी बाबा की मृत्यु हो गई 1898 और वो ऐसी मृत्यु हुई जैसे कि सेल्फ इमोलेशन, जैसे अग्नि समाधि ले दी, उनकी जो गुफा थी एक दिन उसमें से धुआं निकलने लगा, ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने अपने देह का की अंतिम आहुति दे दी उस दिन। तो ऐसी भी गुप्त आत्माएं संसार में थी उस समय जो तपस्वी थी और योगी थी। तो कुमार अर्थात सर्वशक्तिवान साथ कुछ भी असंभव नहीं, कुमार अर्थात अशांत शांति फैलाने वाले। छठवा, कुमार अर्थात पक्के कुमार, हिलने वाले नहीं, इधर टकराव हुआ फिर संसार में गए, जो चीज छोड़ दी थी उसको वापस ले लेना, जिस चीज का त्याग कर दिया था। महान आत्मा अर्थात एक ही बार संकल्प करते, एक ही बार त्याग करते, बार बार त्याग करना नहीं। जैसे स्मोकिंग वाले कहते हैं ना, गिविंग अप स्मोकिंग इज वेरी इजी, आई हैव डन इट मेनी टाइम्स, स्मोकिंग छोड़ना बहुत आसान है, मैंने इतनी बार किया है। इतनी बार किया अर्थात हुआ नहीं है, महान आत्माएं एक ही बार प्रतिज्ञा करती है, जो चीज छोड़ना है तुरंत नहीं छोड़ो उसको, सोचो, टेक टाइम, सारा कुछ सोचो, और जब फाइनल निर्णय ले लिया जाए कि छोड़ना है तो उसको ऐसा छोड़ो कि वापस उसको उठाना नहीं। फिर कोई भी चीज, हमारा एक मित्र था, उसकी माताजी जब कहीं जाती थी तीर्थ यात्रा में एक चीज छोड़ के आती थी जो उसको सबसे पसंद है। बद्रीनाथ गई थी, जिलेबी छोड़ के आई, ऐसे एक 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 चीज छोड़ के आती थी। तो कुमार अर्थात यहां चाहे कुछ भी हो जाए वापस नहीं जाना, नो गोइंग बैक, कट द ब्रिजेस, जो पुल बांधे हैं तोड़ दो, थ्रो द लैडर, जो सीढ़ी से चढ़े हो अब वापस नीचे नहीं आना उसको फेंक दो, ड्राउन द बोट, जिस नैया में बैठकर आए थे उसको अब डुबो दो। ये मार्ग है, वापस नहीं जाना। तो छठवां पॉइंट है कुमार अर्थात पक्के कुमार। सातवां, यहां से ऐसा परिवर्तन होकर जाओ, ऐसा भरपूर होकर जाओ जो जो भी देखे तो क्या कहे, देवता आ गए। आठवां, कुमार अर्थात सरकार को भी रास्ता दिखाने वाले, गवर्नमेंट को भी रास्ता दिखाने वाले। कैसे रास्ता दिखाएंगे प्रभाकर भाई, गवर्नमेंट को कैसे रास्ता दिखाएंगे? और सैंपल दिखाने वो मान जाएंगे बाहर वाले। तो सरकार को भी रास्ता दिखाना अर्थात नई प्लानिंग करना विकास की और भेजना कि ऐसा हो सकता है, नई नई रचनात्मक प्लानिंग जिसमें हम ये दिखाएं कि संसार के युद्ध है उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है, किस तरह से उनको ट्रेन किया जा सकता है, बिजी किया जा सकता है, विनाशकारी जो प्रवृत्तियां है उससे कैसे ठीक किया जा सकता है, आतंकवादियों को क्या किया जा सकता है, उनमें क्या किया जा सकता है जैसे परिवर्तन आए। बहुत सारी नई नई प्लानिंग सोचकर सरकार को भी मार्ग दिखाने वाले। और नौवा कुमार अर्थात लास्ट पॉइंट निर्विघ्न, निर्विघ्न गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अर्थात निर्विघ्न, गुड मॉर्निंग अर्थात शुभ प्रात, शुभ प्रातः अर्थात कोई भी अशुभ कार्य नहीं, कुछ भी अशुभ नहीं। गुड मॉर्निंग का बड़ा भारी मीनिंग दिया पापा ने, निर्विघ्न यह है गुड मॉर्निंग। तो जब भी गुड मॉर्निंग कहो तो शैलेंद्र भाई साथ साथ के आना चाहिए, निर्विघ्न बनने की गुड मॉर्निंग। तो कुमारों से ऐसी है सात नौ बातें कही। पहला कुमार अर्थात सदा स्थापना के निमित्त गॉडली युद्ध और वो विनाश के निमित्त है। दूसरा कुमार अर्थात बाप दादा की जो उम्मीदें है वो पूर्ण करने वाली, विजय का झंडा हाथ में लेकर सारे विश्व में घूमने वाले हैं। कितना अच्छा दृश्य है, विजय का झंडा हाथ में और घूम रहे हैं विश्व भर में। तीसरा कुमार अर्थात सदा उड़ती कला, चढ़ती कला, रुकती कला नहीं, ठहरती कला नहीं, गिरती कला तो बिल्कुल भी नहीं, गिरती कला भी है, धड़ाम से गिरे, ऐसे गिरे कि बात मत पूछो, फिर उठना भी मुश्किल है, इतने फ्रैक्चर्स पट्टियां कैसे उड़ेंगे, और उठ भी गए तो वो नशा नहीं रहेगा फिर। अगला कुमार अर्थात सर्वशक्तिवान बाप साथ, असंभव कुछ भी नहीं, कुछ भी कर सकते हैं ऐसे। अगला शांति फैलाने वाले, छठवा पक्के पक्के कुमार, हिलने वाले नहीं, हलचल में आने वाले नहीं, इधर से वापस उस पुरानी दुनिया में जाने वाले नहीं और वहां जाके फिर बताना कि ये हमारे जो बच्चे हैं ये भी शिव बाबा के ही बच्चे हैं। पहले कुमार थे अभी चार है, इनको लाने के लिए ही हम गए थे ज्ञान युक्त कारण ढूंढना, फिर बचता ही क्या है, यही कारण बचते दोष तो ड्रामा में किसी का ही नहीं है, ड्रामा में हर एक्टर ही निर्दोष है, कहीं किसी का दोष ही नहीं कुमार अर्थात सरकार को भी रास्ता दिखाने वाले। और लास्ट कुमार अर्थात गुड मॉर्निंग, कुमार अर्थात निर्विघ्न, कुमार अर्थात विघ्न नहीं। तो ऐसी कुछ बातें कुमारियों से की और कुछ बातें कुमारों से की। अभी मुख्य मुरली है तो क्या कहा उसमें, बाइबल में एक बहुत सुंदर, बाइबल में तो नहीं परंतु क्रिश्चियनिटी में एक सुंदर मूसा के जीवन का वर्णन है कि मूसा भगवान से कहता है, प्रार्थना करता है कि मुझे तेरे कुछ ऐसे भक्त से मिला जो तुझसे बहुत प्यार करता है। तो भगवान की आवाज आती है एंड गॉड स्पोक टू मोसेस कि जाओ, एक एक फला फला स्थान है उसके पीछे एक मेरा भक्त है, उसको जाके मिलो। वो बहुत खुश हो जाता है, जाता है मूसा वहां पर और देखता है एक झाड़ियों के पीछे एक बहुत गरीब व्यक्ति बैठा है और उसके पूरे इतनी बीमारियां है, कीड़े रेंग रहे हैं और चिथड़े कपड़ों के लगे हुए हैं, बस अभी मरना सन्न है, अब मरा तब मरा। और उसको एकदम दुख होता है ये दृश्य देखकर कि ये व्यक्ति इतना दुखी है और इतना अभी मरने ही वाला है। वो उसके पास जाता है मूसा और कहता है, तुम्हें कुछ चाहिए क्या, बोलो। वो कहता है, हाँ मुझे बस एक पानी दो, एक ग्लास पानी दो, मुझे प्यास लगी है। मूसा जाता है पानी पीने, पानी लाने, और जब तक पानी लेकर आता है पाता है कि ये व्यक्ति मर चुका है। बहुत दुख होता है, फिर सोचता है कम से कम इसका क्रियाक्रम तो करूं। कफन लेने जाता है, जब आके देखता है तब तक एक शेर उसके शरीर को खा चुका होता है। तब उसके हृदय से आर्त पुकार निकलती है, हे परमात्मा तू कहाँ है, क्या मनुष्य जीवन ऐसा ही दुखमय होगा। जो तुझे कहा जाता है अल रहमान अल रहीम, गॉड ऑफ कंपैशन, गॉड ऑफ मर्सी, वो कहां है तेरी करुणा, कहां है तेरी अनुकंपा, कहां है तेरी ग्रेस? क्यों जीवन में इतना दुख है? क्यों ऐसा है कि किसी को सब कुछ मिल रहा है, और क्यों ऐसा है किसी को स्वर्ग मिल रहा है, और क्यों ऐसा है कोई मरना भी ऐसा तड़प तड़प के? क्या यही तेरा न्याय है? और ये प्रश्न मूसा पूछता है, और जो प्रश्न उसने उतने वर्ष पहले पूछा था, आज भी मनुष्य यही प्रश्न पूछता है कि इतना दुख क्यों, जीवन में इतना दुख क्यों, दुख ही दुख, चारों ओर दुख ही दुख, और ऐसा क्यों? जितने नास्तिक संसार में पैदा हुए हैं, क्यों पैदा हुए? बर्ट्रैंड रसेल ने कई जगह अपने, सबसे बड़ा नास्तिकवादी था वो, उसने सब जगह बहुत विरोध किया है जो लोग भगवान को मानते हैं उनका, कई सारे उदाहरण दिए, ये देखो बच्चा पैदा हुआ, अभी अभी बीमारी हो गई, क्या दोष था इसका? क्या भगवान ऐसा है, और क्या परमात्मा ये चाहता है कि अपाहिज बच्चा पैदा हुए और अब ये पूरा जीवन भर ऐसा रहे? ऐसे बहुत सारे तर्क दिए हैं। कल की मुरली में मम्मा से मिला, मम्मा के महावाक्य पैराग्राफ 2, बदनसीबी खुशनसीबी परमात्मा देता है, यह कहना बड़ी मूर्खता है। बाप तो आए हैं खुशनसीब बनाने। तो ऐसे असंख्य तर्क संसार में दिए हुए, क्यों दिए हुए? यदि वो है तो इतना दुख क्यों, इतना दर्द क्यों, इतनी पीड़ा क्यों, क्यों ऐसी ऐसी बीमारियां हैं? क्या दोष है छोटे से बच्चों का? इतना सा है और इतनी बड़ी बीमारी हो गई। आज हमारी ओपीडी में एक बच्चा आया था, ब्राह्मण परिवार का ही, छोटा सा, 7 या 8 साल का। उसकी माता जी कह रही थी उसको डायबिटीज है। अभी एक जगह थे हम, वहां पर एक माता जी, उसके उसने कहा कि क्या करूं मेरे बेटे के लिए, जो बीमारी है वो ऐसी बीमारी है कि कभी भी ठीक ना होने वाली, रेयर सिंड्रोम्स, म्यूट जेनेटिक सिंड्रोम्स। अब उस बच्चे को सारा जीवन लेकर चलना है, एक तरफ ज्ञान योग और पुरुषार्थ है और दूसरी तरफ वो बच्चा है, क्या करे? तो ऐसे दुख 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 संसार में बहुत है। बाबा क्या कहते हैं, तुम कौन हो, तुम कौन हो? अरे विश्व कल्याणकारी नहीं, संडे की मुरली, बेगमपुर के बादशाह हो है या ऐसे ही झूठा झूठा? उसने कहा है तो लगता तो नहीं, दुख तो बहुत है, थोड़ा थोड़ा है, कहाँ चले जाते हैं? गमपुर, बेगमपुर, बाजू में गमपुर, कभी भी इधर 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 इधर, बेगम से गम, गम से बेगम, आना जाना चालू रहता है, थोड़े देर इधर, मधुबन में आए तो बेगमपुर, घर गए तो गमपुर, इधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, कभी इधर ज्यादा समय रह जाते, इधर तो कम ही रहते, इधर ही ज्यादा, इधर तो बहुत कम रहते, इधर के क्षण तो गिने चुने हैं, गिनती के हैं बस, हाथों पर गिनती कर सकते हैं, कब कब हाँ बाबा के सामने बाबा से मिल रहे थे, 1, मधुबन में सेवा की थी, 2, बस ऐसे है। इधर ज्यादा है, साल में एक बार। बाकी तो गमों से भरा हुआ है जीवन। तो बेगमपुर के बादशाह, कितना ऊंचा टाइटल है। एक व्यक्ति होता है जो इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है, भगवान से कहता है, कैसा तू भगवान है, क्या मैं ही एक मिला था तुझे दुखी करने के लिए? इतने मेरे दुख कम होने का तो नाम ही नहीं, हर दिन बढ़ रहे, तू इतना रहमदिल है, बहुत दुखी होता है, और एक दिन कैसा है, कम से कम इतना तो कर कि किसी दूसरे के साथ मेरा दुख एक्सचेंज कर ले, जिसका कम दुख हो मुझे दे दे और मेरा दुख उसको दे दे, इतना तो कर कम से कम। वो व्यक्ति, वो सुफ, वो मुस्लिम व्यक्ति उस रात सोता है और रात में स्वप्न देखता है कि सुबह सुबह आवाज आई आसमान से कि सभी धरती निवासी अपने अपने दुखों की पोटली बांधकर मस्जिद में पहुंच जाए, तो वो भी फटाफट अपने सारे दुखों को बांधता है और पोटली लेके मस्जिद की ओर भागने लगता है और देखते हुए आश्चर्य होता है कि इसमें भागने वालों में राजा भी है, वजीर भी है, वो पुरोहित पंडित मौलवी वो भी भाग रहे हैं साथ साथ। वो तो सोचता था वो ज्यादा दुखी सुखी है और वो ये भी देख लेता है कि उनकी पोटलियां मेरे से बड़ी है, तो वो ध्यान नहीं देता है, वो पहुंच जाता है। जैसे ही मस्जिद में सब आते फिर से आवाज होती है एक कि अब सामने जो खूंटी लटकी हुई है वहां सब अपनी अपनी पोटलियां जाके टांग दो, वो सारे टांग देते हैं। फिर से एक आवाज आती है, अब जिसको जो पोटली चाहिए वो ले ले, परंतु अब उसको डर लगने लगता है क्योंकि अब वो सोचने लगता है मेरी जो पोटली है वो अपनी परिचित है, इतने सालों से उसके साथ चल रहा हूं, दूसरों की पोटली में पता नहीं बिच्छू टिंडन क्या क्या होंगे, तो अब उसको डर ये लगता है मेरी पोटली कोई दूसरी ना ले ले, दूसरा ले ले तो बस तो मेरी गठरी मैं ही लूंगा, और तेजी से भागता है और अपनी गठरी को पकड़ लेता है और उसको लगता है बहुत अच्छा लगता है, उसको सुकून की किसी और ने नहीं ली क्योंकि बाकियों की जो है वो बड़ी बड़ी है और उसमें क्या है वो पता नहीं। अब मेरा जो है, जैसे एक एग्जाम्पल, मेरा सिर दर्द इतने समय से चल रहा है, मेरा अपना परिचित अपना सिर दर्द है, इससे तो मेरा एडजस्टमेंट हो गया इतने सालों से, ये बीमारी के साथ मैं जी तो रहा हूं, अब मैं किसी और का ले लूं वो पता नहीं उसका कितना इंटेंसिटी और कितना क्या है, वो माइग्रेन अजीब प्रकार का माइग्रेन होगा, मेरा अपना माइग्रेन तो रोज का है, मेरा अपना दुख तो डेली का दुख है। तो जैसे ही उसको मिला चैन की सांस ली उसने, वाह, और फिर सुबह आंख खुली, ये स्वप्न था और कहा भगवान जो है वही ठीक है, मेरा अपना दुख ठीक है, मुझे नया नहीं चाहिए, किसी और का नहीं चाहिए, अपरिचित वाला नहीं चाहिए, क्योंकि हरेक के अपने अपने अदृश्य दुख है, हरेक की गठरियां बहुत बड़ी बड़ी है, वो तो तभी दिखा स्वप्न में, बाकी तो दिखती नहीं दिन भर, दिन भर तो लगता है ये तो कितना अच्छा है, देखो 9 बजे ड्यूटी पे जाते 5 बजे निकल के आ जाते, कितनी आरामदायी जिंदगी, बाद में कोई फोन नहीं कॉल नहीं कुछ नहीं, और हम देखो तो जब देखो तब कॉल आते रहते हैं, कुछ करते रहते, कोई कुछ मांगता है कोई कुछ करता है, ड्यूटी के टाइमिंग भी निश्चित नहीं है, कभी इधर खींचते कभी उधर खींचाता, वो देखता है वो बहुत ही अच्छा है, ये कमलेश आराम से लाइब्रेरी में बैठता है कितने सुखी है। दूसरों के सब ठीक है, हम ही ऐसे है। तो जैसे ही वो द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, दूर के ढोल सुहावने, तो बाबा चाहते हैं कि हम सभी गमों से दुखों से पीड़ा से दर्द से मुक्त हो जाए, और उस अवस्था को उस संसार को क्या नाम दिया, बेगमपुर। तो बेगमपुर की ऐसी 12 बातें हैं मुरली में, वो पहले आप बताएंगे फिर हम बताएंगे। बेगमपुर की ऐसी, ये नया अच्छा आ गया, बोर्ड आ गया इधर, तो बेफिक्र बादशाह कहो, बेगमपुर के बादशाह कहो, बिन कौड़ी बादशाह कहो, बेताज बादशाह कहो, बेपरवाह बादशाह कहो, जो भी कहो बादशाह है। तो ये जो बादशाहत है और ये जो बादशाही है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बाबा ने बताई है, क्या क्या बताई है पहले आप बताएंगे फिर हम बताएंगे। क्या कहा है बेगमपुर के विषय में, जो जो बातें कही सारी बताओ। मुरली को कितना टाइम हुआ, ट्यूसडे है ना आज, अभी 3 दिन भी नहीं हुआ पूरा, फिर तो क्या। इतना जल्दी मत भूलना, एक हफ्ते के बाद भूलना, एक हफ्ते के बाद ये निश्चिंत होके भूल जाना, फिर नहीं आ जाती है तब तक। एक बाप दूसरा न कोई, सर्व संबंधों की प्राप्ति। और पीछे शैलेंद्र भाई क्या कहा, किस में गम नहीं? हाँ मुझे लगा दम नहीं। कोई गम नहीं। और शाहू भाई संडे की मुरली, तो उसमें क्या, वही तो बेफिक्र बादशाह होगी, ये सारी पॉइंट्स है सारी। बेफिक्र बादशाह में क्या, बादशाह हो या बन रहे हो, और दुख का संकल्प ना आए, फिर क्या है, सुख की सैया और प्राप्ति स्वरूप, और बोलो ना कंबाइंड स्वरूप, और बाउंड्री के अंदर रहना है, बाउंड्री के बाहर गए तो दुख, और जंगल में मंगल। हाँ मधुबन में क्या, क्या बोला, स्वीट होम बोला, फिर क्या बोला? क्या बोला फिर? और तो सबसे पहला है ये जो बादशाही है ये केवल संगम युग की बादशाही है, ये बादशाही और किसी भी युग में नहीं है, ये बादशाही ना सतयुग में है, ना त्रेता में है, ना द्वापर में है, ना कलयुग में है, केवल और केवल संगम युग पर तुम बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बनते हो। सतयुग त्रेता में तो उसका खबर ही नहीं है, दुख का अनुभव नहीं है, इसके लिए वहां पर ये नहीं कहा जाएगा बेगमपुर के बादशाह। गम का अनुभव तब होता है, बेगम का अनुभव तब होता है, बेगमपुर का अनुभव तब होता है जब गमपुर का अनुभव है, दुख का अनुभव है उसके बाद ही, तभी तुलनात्मक व्यक्ति सुखी होता है, उसका दुख का अनुभव नहीं तो सुखी भी नहीं। इसके लिए दोनों चीजें यहां है, दुख के अनुभव के बीच में सुख का अनुभव। तो ये कहां होता है बेगमपुर के बादशाह, ये संसार केवल और केवल संगम युग में, और किसी युग में तुम ये नहीं बन सकते, ये सबसे पहली पॉइंट है। दूसरा है बेगमपुर के बादशाह अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, संकल्प में भी दुख नहीं, दुख की लहर नहीं, छह प्रकार की दुख की लहरें गिनाई है बाबा ने, कौन कौन सी सुबह भी चर्चा की थी, से छह प्रकार की दुख की लहर, तन मन धन, संबंध संपर्क, वायुमंडल और स्वभाव संस्कार, ये छह दुख के की लहरें है, छह प्रकार के दुख। सबसे पहले तन का, सुबह चर्चा की थी, तन का दुख कौन सा, बीमारी छोड़कर तन का, बीमारी छोड़कर, बीमारी की चर्चा सुबह की थी, गर्मी, ठंडी, बारिश और मच्छर, और बीमारी छोड़कर अनिद्रा, याति निद्रा, और हो गया वो प्रकृति। हाँ हम मोटे ही बहुत है, हम पतले बहुत है, पतलों वालों को चिंता है मोटे होने की, और मोटे चिंता है पतले होने की, पतले दुखी है, दिन रात खाते रहते हैं खाते रहते हैं, फिर भी मोटे नहीं होते, कुछ दो, कोई सिरप दो, कोई टॉनिक दो, जिससे भूख कम है, नहीं भूख तो बहुत है पर मोटे नहीं होते, बॉडी नहीं बनती, और जो मोटे है वो पतले होने की दवाई दो, ये तो बहुत बड़ा दुख है, पतला होना मोटा होना, या कुछ कहीं कुछ दाग दिग, या काले सफेद को काला बनाने की चिंता में, बाल आ जाए, जिनको है वो उसको ठीक करने में लगे, स्टाइलिश बनाने में, जिनको नहीं है वो लाने में, कुछ भी करने को तैयार होते हैं लोग। हमारे पास वो प्लास्टिक सर्जन है, उनके पास ऐसे ऐसे लोग आते ऐसी ऐसी छोटी छोटी उनकी होती है, नाक उनको थोड़ा ठीक करना है, किसी को कुछ करना है, चेहरे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तन, तन की बीमारी की क्या, दुख की लहर, शरीर से दुख उत्पन्न हो, जितना शरीर से अधिक अटैचमेंट उतना उससे ज्यादा दुख, जो जितना शरीर से अलग या योग का अभ्यास जितना ज्यादा या जितनी बार ज्यादा, सुबह भी अमृत वेला शक्तिशाली किया, शाम का भी किया, रात का भी किया, दोपहर में भी किया, बार बार शरीर से अलग होने का प्रयत्न किया, उसको दुख कम, और जो कुछ भी नहीं कर रहा है और शरीर में ही लगा हुआ है उसको दुख ज्यादा। तो पहला तन के दुख की लहर, दूसरा मन, सुबह भी कहा अगर श्रेष्ठ संकल्प नहीं चल रहे, चिंतन नहीं चल रहा है तो क्या होगा, व्यर्थ संकल्प, ये भी दुख है। तीसरा धन, धन की कमी, विनाशी धन के पीछे पागल, सूक्ष्म धन को छोड़ रखा है। अगला तन मन धन, स्वभाव संस्कार, अपना और दूसरों का स्वभाव संस्कार की कमी, किसी ना कोई कमजोरी है, कमी नहीं कमजोरी, कोई ना कोई कमजोरी है, वो दुख दे रही है हमको भी और दूसरों को भी। अगला वातावरण और वायुमंडल, इसमें वो प्रकृति वाली पॉइंट आ सकती है, या फिर जो सुबह चर्चा कर रहे थे हम, दुख का वायुमंडल या विकार का वायुमंडल, उसके बीच में चले गए और दुखी हो गए। अगला लास्ट, लास्ट क्या, वातावरण हो गया, स्वभाव संस्कार हो गया, संबंध और संपर्क के आधार पर दुख की लहर, ऐसे छह प्रकार की दुख की लहर सुनाई। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात पहला संगम युग, केवल और केवल संगम युग पर, दूसरा कोई गम नहीं, तीसरा सुख की शैया में निरंतर, सुख के संसार में रहने वाले, सुख की शैया में निरंतर रहने वाले, सुख के संसार में निरंतर रहने वाले, यह है बेगमपुर की बादशाहत। दुख कहीं पर भी नहीं, केवल दुख तो वो छह प्रकार के दुख पूरे हुए, अब जो रह रहे हैं वो केवल और केवल कहां, सुख की शैया में, और निरंतर उसी में अपने आप को स्थित रखना बहुत बड़ी साधना है, दुख ना आने देना, क्योंकि ये जो छह प्रकार के दुख बाबा ने गिनाए हैं वो बहुत सारे हमारे वश में नहीं है, जैसे वायुमंडल, वातावरण, संबंध, संपर्क, सामने वाला क्या करेगा हमारे साथ ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, उसकी प्रतिक्रिया है, उसके भाव, उसकी रिएक्शन, सब कुछ अलग अलग होता है, परंतु उसके कुछ भी करने से हम प्रभावित ना हो और हम अपनी सुख की शैया में रहे, ये समस्या है। तो तीसरा है सुख की शैया, चौथा है संपत्ति, सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी है, ज्ञान, धन, कितना हमने अपने आप को ज्ञान के धन से भरा है, और ज्ञान धन से भरने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, टाइम, जिनकी व्यस्त दिनचर्या में अपने आप को ऐसा बिजी कर रखा है, ट्रैवलिंग में 4 घंटा, ट्रैवलिंग में 3 घंटा, ऑफिस टाइमिंग 12 घंटा, 8 घंटा, कहां से चिंतन करेंगे। ग्रीड को नीड का नाम दे रखा है, कुमारियों को क्या कहा, चमाट और रोटी, बस वही है, मोचरा और तब। ज्ञान की संपत्ति को यदि जमा करना है तो मुरली की जितनी बातें हैं वो सारी होनी चाहिए, जैसे अभी अभी हम सोच रहे थे कहीं पर, मुरली M अर्थात मंथन, U अर्थात अंडरस्टैंडिंग, R अर्थात रीडिंग, L अर्थात लर्निंग मेथड्स, और I अर्थात इम्बाइब, इम्बिबिशन, धारण करना। मुरली में ये पांचों चीजें होनी चाहिए, कितना हम ध्यान दे रहे हैं, मुरली का मंथन कितना कर रहे हैं, समझ कितना रहे, रीड किस रीति से कर रहे हैं, कौन सी विधि से रीड कर रहे हो, या ऐसे ही बस काम चलाने के लिए, लर्निंग मेथड्स जो बनाई है अलग अलग, और इम्बाइब कितना धारण कर रहे हैं मुरली को, ये सारी चीजों के लिए टाइम चाहिए, एकांत चाहिए, मौन चाहिए, संगठन चाहिए, चर्चा करने के लिए रोज की मुरली पर। एक भी दिन ऐसा ना जाए कि हम बैठकर उस मुरली की चर्चा हमने नहीं की हो। कोई भी किसी के साथ कहीं तौर तो चर्चा करनी ही चाहिए, हरेक ने, बड़ा काम है ये। बैठो दो लोग और चर्चा चालू कि बाबा ने आज कहा, शिव बाबा ये शब्द कैसा है, साकार मुरली आज की बहुत ही मीठा है, बाप क्या करता है, सारा सुख का संचार संसार रचा कर खुद को छिपा देता है, ऐसे पॉइंट निकालने हैं उसमें से तो मजा आएगा कुछ। क्यों छिपाता है, कहां छिपाता है, किस लिए छिपाता है, हम भी कैसे छिपे, बहुत सारे प्रश्न है। कौन सा रस, कैसा रस, कौन सी जीवन मुक्ति, प्रश्न मन में घूमते रहे। तो ये सब होगा ज्ञान धन। ज्ञान धन उसके सिवा एकत्र नहीं होगा। ज्ञान धन के लिए ज्ञान साधना की आवश्यकता है। ज्ञान धन के लिए ज्ञान के संस्कार क्रिएट करने, यहां पर विकार और अज्ञान के संस्कार है, अभी नए ज्ञान के संस्कार क्रिएट करने, और वो होंगे ज्ञान चर्चा से, शास्त्रार्थ से, आपस में मिलकर ज्ञान विवाद संवाद जो भी कहो, हेल्दी डिस्कशन कुछ भी, परंतु करना जरूरी है। चाहे घर में करो, ऑफिस में करो, गार्डन में करो, सेंटर में करो, कहीं पर भी करो, पर दो लोग बैठे और चर्चा करें, दो कुमार दो कुमारी, कोई भी, दो बहनें दो भाई दो माताएं बैठे और ज्ञान चर्चा करें कि बाबा ने ये जो कहा आज क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, किस अर्थ से कहा, बहुत जरूरी है। उसके बाद है संबंध। ये जो बेफिक्र बादशाहत है बेगमपुर की, उसमें क्यों बेगमपुर है, क्योंकि सारे ही संबंध किससे है, एक अविनाशी से है, और एक सारे संबंध अविनाशी है, एक भी संबंध की कमी इसमें रह गई। अगर उसको अपना ड्राइवर नहीं बनाया तो गाड़ी के ड्राइवर में ही मोह होगा। अगर उसको खिवैया, आज बोला ना खिवैया बनकर आता है, खिवैया नहीं बनाया तो जो खिवैया है उससे मोह होगा। अगर उसको अपना धोबी नहीं बनाया तो अपने धोबी से मोह हो जाएगा। अगर उसको अपना डॉक्टर नहीं बनाया तो डॉक्टर के पीछे पागल होके पड़ेंगे दीवाने बनकर। सर्व संबंध एक से, सारे संबंध, कोई भी संबंध छूट ना पाए, सारे संबंध एक से। तो संबंध। उसके बाद है मालिक। ये बादशाही अर्थात बालक सो मालिक, सिक्स्थ, बालक सो मालिक। यहां पे तुम मालिक बनते हो। एक जगह कहा बेगर भी हो और मालिक भी हो। बालिक बेगर क्यों, क्योंकि देह भी मेरी नहीं, और मालिक भी हो क्योंकि उसके सारे खजाने मेरे खजाने, इसलिए सारे खजाने, मालिक अर्थात मालकियत, मालिकपन का अनुभव, कि इस देह का भी मैं मालिक हूं और भगवान के जो सारे खजाने हैं, नौ खजाने, वो सब मेरे हैं, तो मालिक। उसके बाद है सातवा, बाउंड्री के अंदर सीता के साथ साथ। इसके पहले भी कहीं सुनाया था, सीता अपहरण क्यों हुआ, सबसे पहला उसने आकर्षण हुआ, फर्स्ट स्टेज आकर्षण, पहला क्या हुआ सीता को, आकर्षण हुआ। दूसरी स्टेज इच्छा हुई कि मुझे मिल जाए वो हिरन, पहले वस्तु को देखा, बहुत अच्छी है मार्केट में दिख रही है, मुझे चाहिए, आकर्षण, पहला आकर्षण अट्रैक्शन, दूसरा इच्छा, और उसके बाद में जिद, एक से खाली इच्छा, उसके बाद है थर्ड जिद, चाहिए मतलब चाहिए, नहीं तो मैं तो चली माइके, अगर नहीं दिए तुमने तो मुझे चाहिए, कैसे भी करके लाओ, कुछ भी करके लाओ, पर मुझे चाहिए, और जब तक नहीं मिलता तब तक मूड ऑफ, मनाते रहो जो भी करो पर मानेंगी नहीं, पहले लाओ। खाना बनाना बंद। थर्ड स्टेज विद फोर्थ स्टेज धोखा। राम जी गए, उधर से आवाज किया राम ने, लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण। राम की वो मारीच राक्षस की आवाज को राम की आवाज समझ लिया, है माया की आवाज, माया पुकार रही है, माया बोल रही है, पर लग रहा है ये श्रीमत है मनमत और परमत और परमत और जनमत, परंतु लग रहा है यही श्रीमत है, ये श्रीमत है, ये नजर आ रहा है, पर ये धोखा हुआ। फोर्थ स्टेज। उसके बाद में फिफ्थ, अविश्वास। जो जगत का नियंता है वो गया है, क्या वो कभी दुखी होकर चिल्लाएगा? परंतु राम पर अविश्वास, और कहा लक्ष्मण तुम जाओ जाकर देखो क्या हो रहा है, जैसे कि लक्ष्मण बचाएगा राम को, वो सारे सकल जग पालन कर जोई ताकि नाम राम अस होई, ऐसा वो राम सारे जगत का पालन करने वाला है, वो इसको कह रही है उसको जाके देखो क्या हो रहा है, वो अकेला समर्थ है सबको मारने में। अविश्वास। फिफ्थ, सिक्स स्टेज, रावण को पहचान न सकी। सीता अपहरण की सेवन स्टेजेस, आत्मा के अपहरण की स्टेजेस है, और रोज की स्टेजेस है हर आत्मा के। ये रावण है उसे दिखाई नहीं, व्हाइट ड्रेस बैच ब्रह्मा भोजन भी खा रहा है, कैसे पता ही नहीं चलता है यही माया रावण है। और फिर वो कहता है चलो थोड़ा घूम के आते हैं नक्की, हम कहते हैं इंटरनेशनल योग का टाइम है 6:30 बजे, वो कहते हैं अगली बार बैठ जाओ ना अभी तब तक चलो घूम के आते, तो हम तो पहचान ही नहीं पाए। योग तो हम भी करेंगे ना साथ में करेंगे बाद में, अभी तो पहले घूम के आते। कहां जा रहे हो योग में? चलो पहले सैंडविच खा के आते, 15 मिनट तो लगते हैं, बाद में बैठ जाना है ना। क्या सेवन, दिस इज सिक्स्थ, रावण को पहचान न पाना। कितने हो गए? सबसे पहले तो अट्रैक्शन हुआ, सेकंड इच्छा हुई, थर्ड जिद, फोर्थ धोखा, फिफ्थ अविश्वास, सिक्स्थ रावण को पहचान न पाना, और लास्ट सेवेंथ लक्ष्मण रेखा को पार कर देना। बाउंड्री से बाहर तो सुखमय संसार से दुखमय संसार में। अभी हीरो एक्टर थे ग्राउंड पर, अभी स्टेडियम में ऑडियंस के साथ में कॉमन एक्टर्स बन के बैठे, जन सामान्य जन भर के, अब तक सबकी आंखें स्टेडियम पर थी, अभी बाउंड्री से बाहर। तो बाउंड्री के अंदर, बाउंड्री अर्थात श्रीमत, बाउंड्री अर्थात मर्यादा है, बाउंड्री अर्थात नियम, बाउंड्री अर्थात रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोड्स ऑफ कॉन्डक्ट, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, डॉगमास, यहाँ पे जो कुछ भी बने हुए हैं ये सब ईश्वर प्रदत्त है, भगवान द्वारा बनाए हुए नियम मर्यादाएं हैं, और उनमें हम नहीं जानते पर कल्याण छिपा हुआ है, क्योंकि देखा गया जिन्होंने जिन्होंने इसको तोड़ा उनकी क्या गति हुई। जो भी यहां से बाहर गए या जिन्होंने भी इसको तोड़ा वो बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं कर पाए, बहुत महान पुरुषार्थ नहीं कर पाए, चल रहे हैं ज्ञान में परंतु ऐसे ही चल रहे हैं। इनके लिए इस एक एक मर्यादा में गुप्त बल छिपा हुआ है, एक एक श्रीमत में सामर्थ्य है, ईश्वरीय पावर है उसमें, हमें पता नहीं परंतु फॉलो करेंगे तो अपने आप वो बल धीरे धीरे अंदर महसूस होगा कि इस प्रिंसिपल में, इस रूल में कुछ ना कुछ है, क्योंकि किसी मनुष्य के नहीं है ये नियम, भगवान के नियम है, और वो जो सारे चक्र को देख लेता है, वो जो आया है पतित को पावन बनाने, वो जिस एक को ही पता है क्या है वो युक्ति, जिससे पतित से आत्मा, उस एक को ही पता है आत्मा पतित कैसे बनी, इसलिए वो एक ही बता सकता है आप पावन कैसे बनेगी। बाकी किसी भी धर्म गुरु को ये नहीं पता, सिद्धांत तो उन्होंने भी रखे परंतु कैसे वो नहीं पता। तो कहां थे, बाउंड्री, बाउंड्री के अंदर अर्थात बेगमपुर के बादशाह। अगला, बेगमपुर के बादशाह अर्थात कमल। दुख का वातावरण है परंतु स्थिति कमल समान। कमल की क्या विशेषता है, कमल के फूल के पास जाओ और बैठ के देखो उसको, या खड़े रहकर देखो कैसा रहता है वो, क्या क्या उसके फायदे हैं। सोचो कितनी मुरलियों में हजारों बार कमल शब्द आता है, कमल के क्या फायदे हैं? 10 फायदे आप सबके लिए होमवर्क, कमल की विशेषता है कम से कम 10, वो छोड़कर कीचड़ में रहके न्यारा रहता है वो छोड़कर तो उसी का विस्तार करेंगे घुमा घुमा के वो छोड़कर ठीक है कमल, हाँ वो लिखो आप। तो कमल, फिर उसके बाद में है बेगमपुर के बादशाह अर्थात बेगमपुर के बादशाह अर्थात और भी कोई पॉइंट है, आठवां खुशी। खुशी, खुशी नशा, ये दोनों चीजें चाहिए तभी बेगमपुर के बादशाह कहा जाएगा, अन्यथा नहीं। अगला, बेगमपुर के बादशाह अर्थात स्वराज्य, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। स्वराज्य, इसमें वो सब कुछ कहा है बाबा ने, रोज दरबार लगाओ, दरबारी कैसे है, काम तो ठीक से कर रहे, यथार्थ कर रहे, कोई धोखा तो नहीं दे रहा है, कोई मीर जाफर तो नहीं बैठा है बीच में 1857 का जिसने धोखा दे दिया और भारत बहुत बड़ी गुलामी की दास्ता वहां से चालू हो गई, लॉर्ड क्लाइव के साथ मिल गया, इसके लिए बैटल ऑफ प्लासी में, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो गई, नहीं तो हार नहीं होने वाली थी क्योंकि हमारी सेना बहुत बड़ी थी और अंग्रेजी की सेना तो बहुत छोटी थी। रॉड क्लाइव छोटे से सैनिकों को लेकर आया था, परंतु उसने ढूंढा कोई ऐसा मिलता है क्या सिराजुद्दौला की सेना में जो कि हाथ मिला ले, और हाथ मिला लिया, बरबर ढूंढ लिया कि हाँ ये मीर जाफर है जो नवाब बनने के ख्वाब देख रहा है। लॉर्ड क्लाइव ने खत लिखा था लंदन में कि सैनिक भेजो, लंदन वालों ने कहा कि हम नहीं भेज सकते, वी आर बिजी विथ नेपोलियन, नेपोलियन को हराने में हम व्यस्त है, तुम जितनी सेना है उससे ही काम चलाओ। और मीर जाफर मिल जाता है 23 जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी मुर्शिदाबाद के पास 22 किलोमील की दूरी पर, प्लासी के युद्ध में भारत सिराजुद्दौला की हार, ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है और धीरे धीरे सारे बंगाल और सारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज, और फिर धीरे धीरे भारत गुलामी की बेड़ियों में चकड़ जाता है इस एक युद्ध के कारण। तो कैसा हुआ, क्यों हुआ, गद्दार, चाहे वो ये हो, चाहे वो जयचंद हो, पृथ्वीराज चौहान, चाहे वो मानसिंह हो, कोई भी, या चाहे टीपू सुल्तान का वो क्या नाम था उसका जो मिल गया था अंग्रेजों के साथ, तो इंद्रियों में कोई धोखा देने वाला तो नहीं बैठा है कर्मचारी, कोई राज अधिकारी जो धोखा दे दे, ठीक कारोबार, ठीक बादशाह, इसका सर्टिफिकेट लेना है, ठीक बादशाह अर्थात सभी यथार्थ हमारी ऑर्डर पर चलने वाले, इसकी रोज चेकिंग करो कि आज कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया, कान, आंख, नाक, मुख, त्वचा, रस रूप गंध स्पर्श शब्द, किसने धोखा दिया, और यदि दिया रस वही है, अगर दिया तो क्यों दिया, किस कारण से दिया और कैसे दिया, अर्थात हम राजा नहीं, हम बादशाह नहीं, हम स्वराज्य नहीं, हम अथॉरिटी नहीं, हम अनुभवी नहीं। बाबा ने कहा अनुभवी हो, सब बैठे हो, सब अथॉरिटी वाले बैठे हो, सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव और सबसे बड़ी अथॉरिटी है स्वराज्य की, और स्वराज्य ही नहीं तो बादशाह ही कहां की, तो दसवा स्वराज, ग्यारहवा महादानी, ग्यारहवा महादानी खजाने हैं। ये राजाई की सारी बातें चल रही है। इस राजाई में स्वराज्य भी हो तो दानी भी हो, अखूट खजाने हैं तो उनको क्या है फिर देना भी है। स्पिरिचुअली माइजर नहीं बनना है, आध्यात्मिक कंजूस, स्पिरिचुअल क्लोज फिस्टेड पर्सनैलिटी जो है उसको दो। ये डर नहीं रखो कि अभी मेरा दूंगा तो उनको पता चल जाएगा मेरी पॉइंट। मैं अपनी पॉइंट नहीं दूंगा। अपनी पॉइंट पकड़ के रखी है। मैं बोलूंगा, उसने नहीं बोलनी चाहिए, मेरी पॉइंट है, बताऊंगा। बताऊंगा ही नहीं अपनी पॉइंट, छुपा के रखूंगा। जब मेरा टर्न आएगा ना तब बोलूंगा, नहीं तो ये लोग मेरी पॉइंट बोल देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये ज्ञान कैसा है, जितना बांटो जितना उतना बढ़ेगा, उसकी उतनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो ग्यारहवा और लास्ट आप बता दो, आप कौन सा पॉइंट रह गया है। शीश महल में तो देखेंगे, अपने आप पता चल जाएगा, चेकिंग करो, सर्टिफिकेट लो। और नशा खुशी हो गया, नशा और खुशी, उमंग कहाँ है? कल्याणकारी बादशाह में, वो तो कुमारों में हो गया। ड्रामा और प्रभाकर भाई, निश्चय और कोई बता दीजिए। ठीक बादशाह, सर्टिफिकेट वो तो हो गया, वो स्वराज्य में है सारी पॉइंट्स। और कौन सी रह गई? मन का मौन मुरली में आया है। संगठन का क्या? अलबेलापन के नशे में क्या अलबेलेपन का नशा ना हो, बेफिक्र बादशाह की बादशाही में अगर जरा भी अलबेलापन आया तो ये सारी का बादशाही गई। कितनी भारी बादशाही है। अलबेलापन आया तो गई, बाउंड्री से पार गए। हाँ मैं योगी तो हुई ही, राइट, ब्रह्मा कुमार तो बन ही गए, ये अलबेलापन है। हम तो योग तो कर रहे हैं, अमृत वेला उठ रहे, मधुबन में आए, बाबा से भी मिले, मुरली रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। हाँ क्या क्या वहां बैठे हुए? हाँ मेरे तो वो सब तो हम तो कर ही रहे, और क्या करना है? ये भी अलबेलापन है। ये समझना अब तक जो भी सुना जो कुछ किया कुछ भी नहीं किया, अब करना है, आज से चालू करेंगे। अभी 10 बजने को 5 मिनट बाकी है, बस आज से चालू करेंगे। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात फिर से रिवाइज, पहला केवल संगम युग पर है, और कोई टाइम नहीं है ये बादशाही मिलने की। इसके लिए अभी जितनी बनानी चाहिए, जितना अपना साम्राज्य बढ़ाना है कन्हैया भाई बढ़ा लो बादशाही का, बाद में चांस नहीं मिलेगा। दूसरा दुख नहीं, लहर नहीं, नाम निशान नहीं, छीटे नहीं, दुख के जरा भी है तो ढूंढो। 6 प्रकार के दुख गिनाए, उसमें से कौन से दुख की वजह से लहर मुझ में आती है। संबंध ऐसे कुछ गड़बड़ वाले बना के रखे हैं कि दुख तो आना ही है उसमें, इतना लगाव है, इतनी अटैचमेंट है, इतना मोह है, इतनी घृणा है नफरत में, तो दुख आएगा ऐसे संबंधों में। स्वयं को डिटैच करते जाना, यही दुखों से मुक्ति का मार्ग है। तीसरा सुख की शैया, निरंतर सुख की शैया, सुख का संसार। यहां पर तुम्हारा संसार ही बदल गया, स्वभाव संस्कार ही बदल गया, पहले क्या था अब क्या है। फिर उसके बाद संपत्ति, ज्ञान धन, ज्ञान की संपत्ति को जमा करना है, ज्ञान की साधना करनी है, जैसे योग ये साधना है वैसे ज्ञान साधना भी है, ज्ञान की भट्टी करनी है। जैसे रात रात भर योग की भट्टी करते हो वैसे मुरली रात रात भर चिंतन करके बैठो और पढ़ो, वो ज्ञान की भट्टी है। रात रात भर डिस्कशन, हाँ फिर है संबंध, कौन सी बुद्धि किस ओर जा रही है। यदि उसको उस संबंध से याद नहीं किया तो वो संबंध खींचेगा लास्ट में, अंतमति सोगति, वही संबंध याद आएगा लास्ट में। फिर वो भगवान नहीं याद आएगा, बच्चा याद आएगा, पति पत्नी रिश्ते संबंधी मित्र काका काकी सब। अगला मालिक, मास्टर, बालक सो मालिक का नशा, सारी संपत्ति मेरी है, जो उसका वो मेरा, जैसा बाप वैसी मैं। अगला हाँ बाउंड्री के अंदर, सात नंबर, सात चीजें हैं सीता की स्टेजेस, उसमें से एक भी स्टेज चालू होता है आकर्षण से, वहीं पर अगर रोक दिया गया तो आगे का होगा ही नहीं। आकर्षण आया है, मन में उत्पन्न हुआ है, वहीं पर रुक जाओ और उस आकर्षण को सामने रखो, ये वस्तु है, क्या होगा मिल भी जाए तो क्या सुख दे पाएगी मुझे। अगला खुशी और नशा, बेफिक्र बादशाह अर्थात बेगमपुर का बादशाह सदा खुश, इधर कहा था सुख, इधर कहा खुशी। नशा, इस बात का नशा कि हम जंगल में मंगल, कहा ना मधुबन का भी बीच में उदाहरण दिया है, सूखे पहाड़ पर उसमें कहा पे हीरे जैसे श्रेष्ठ सुखों का अनुभव यहाँ हो रहा है, कोने में है परंतु सुखमय संसार यहाँ पर है, मधुबन के लिए कहा है ये सारी बातें। कुमारियों के लिए एक बात और कही थी, ज्ञान का प्रकाश जैसे वो चंद्रमा होता है वैसी रोशनी देने वाली। और तो नशा और खुशी, फिर उसके बाद में स्वराज्य अधिकारी, सारी कर्मेंद्रिया हमारे वश में हो। यदि एक भी कर्मेंद्रिया गीता में लिखा है अगर वश में नहीं रहती है तो जैसे कोई समुद्र है और जिसमें तूफान आ रहा और नाव उस तूफान को कैसे, तूफान नाव को कैसे बहा ले जाता है, वैसे वो एक कर्मेंद्रिया जिसको आपने चिल्ला छोड़ के रखा है वो एक कर्मेंद्रिय बाकी सारी कर्मेंद्रियों को बहा के लेके चली जाएगी। गीता में ऐसा एक जगह लिखा है। तो सारी कर्मेंद्रियों का दरबार लगाओ, यथार्थ चेकिंग करो, जी हजूर जी हाजिर करती रहे कर्मेंद्रिया। और फिर लास्ट महादानी, जो खजाना मिला है अब पालना का रिटर्न देना है, स्कॉलरशिप यही है, जो मिला है अब दो, और नहीं कोई लेने वाला हो तो ढूंढ ढूंढ। उस दिन था ना लास्ट संडे की मुरली, अगर जो जिसको दान देना हो वो क्या करता है, ढिंडोरा पिटवाता है और ढूंढ ढूंढ के दान देता है। और लास्ट अलबेलापन ना हो, अलबेलापन कहाँ है, क्यों है, कैसे है, कहाँ से आया, कब आया, उसको ढूंढो और उसको समाप्त करो, तब बनेंगे बेगमपुर के बादशाह। ऐसे कैसे बेगमपुर के बादशाहों को इसमें से आप बनाओ, सारी मुरली आज ही चाहिए ऐसे बनाओ, चलो ऐसे बेगमपुर के बादशाहों को, ऐसे श्रेष्ठ अनुभव की अथॉरिटी वाली आत्माओं को, ऐसे सब प्रकार के दुखों से मुक्त, सब प्रकार के गम से मुक्त आत्माओं को, सर्व संबंध एक बाप से अनुभव करने वाली आत्माओं को, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान धन को अर्जन करने वाली आत्माओं को, ऐसे पवित्रता सभी आकर्षणों से मुक्त आत्माओं को, ऐसे मर्यादा की बाउंड्री के अंदर रहने वाली आत्माओं को, ऐसे खुशी और नशे में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे उमंग में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, ऐसे आलस अलबेलापन से मुक्त आत्माओं को, ऐसे महादानी आत्माओं को, ऐसे ऐसे संगम युगी बेफिक्र बादशाह, बिनकौड़ी बादशाह, बेपरवाह बादशाह, ठीक बादशाह, सर्टिफिकेट लेने वाली आत्माओं को, कुमारों से मुलाकात, ऐसे स्थापना के निमित्त आत्माओं को, ऐसे गॉडली यूथ आत्माओं को, ऐसे शांति फैलाने वाले आत्माओं को, ऐसे विजय का झंडा सारे विश्व में लहराने वाली आत्माओं को, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को, ऐसे सर्व शक्तिशाली जिसको बाप को साथी बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे यादव सेवा का बैलेंस रख शक्तिशाली प्लान बनाने वाली आत्माओं को, सरकार को भी हिलाने वाली और रास्ता दिखाने वाली आत्माओं को, ऐसे कुमारियों से मुलाकात, ऐसी बाल ब्रह्मचारिणी, ऐसी शिव शक्ति, ऐसी कंबाइंड, ऐसी चमाट से मुक्त, ऐसी लड़कियां नहीं, अपने आप को क्या समझने वाली, शिव शक्ति समझने वाली, जैसी बाप जैसा बाप वैसा मैं समझने वाली आत्मा, ऐसी स्वतंत्र आत्माओं को, ऐसी एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे सर्व संबंध एक से निभाली, एक विजय का माला, विजय नहीं वरमाला, गले की माला, और कुशल भाई ऐसी कौन सी आत्माओं को, बाप से स्कॉलरशिप लेने वाली आत्माओं को, पालना का रिटर्न देने वाली आत्माओं को, ऐसी शुद्ध आत्माओं को, ज्ञान की रोशनी फैलाने वाली आत्माओं को, ऐसे कंबाइंड निर्विघ्न कुमार और गुड मॉर्निंग करने वाली आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते, ओम शांति।